अय्यूब बाब 21। फिर अय्यूब ने जवाब में कहा, ध्यान से मेरे अल्फाज सुनो, यही करने से मुझे तसल्ली दो। जब तक मैं अपनी बात पेश न करूं, मुझे बर्दाश्त करो, इसके बाद अगर चाहो तो मेरा मजाक उड़ाओ। क्या मैं किसी इंसान से एहतजाज कर रहा हूं? हरगिज नहीं। तो फिर क्या अजब कि मेरी रूह इतनी तंग आ गई है? मुझ पर नजर डालो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम हैरानी से अपना हाथ मुंह पर रखोगे। जब कभी मुझे वो ख्याल याद आता है जो मैं पेश करना चाहता हूं, तो मैं दहशतजदा हो जाता हूं, मेरे जिस्म पर थरथराहट तारी हो जाती है। ख्याल ये है कि बेदीन क्यों जीते रहते हैं? न सिर्फ वो उम्र रसीदा हो जाते, बल्कि उनकी ताकत बढ़ती रहती है, उनके बच्चे उनके सामने कायम हो जाते, उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने मजबूत हो जाती है, उनके घर महफूज हैं, न कोई चीज उन्हें डराती, न अल्लाह की सजा उन पर नाजिल होती है। उनका सांड नस्ल बढ़ाने में कभी नाकाम नहीं होता, उनकी गाय वक्त पर जन्म देती और उसके बच्चे कभी जाया नहीं होते। वो अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं तो वो भेड़ बकरियों के रेवड़ की तरह घर से निकलते हैं, उनके लड़के कूदते फांदते नजर आते हैं, वो दफ और सुरूद बजाकर गीत गाते और बांसुरी की सुरीली आवाज निकालकर अपना दिल बहलाते हैं। उनकी जिंदगी खुशहाल रहती है, वो हर दिन पूरा लुत्फ उठाते और आखिरकार बड़े सुकून से पाताल में उतर जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह से कहते हैं, हमसे दूर हो जा, हम तेरी राहों को जानना नहीं चाहते। कादिर मुतलक कौन है कि हम उसकी खिदमत करें? उससे दुआ करने से हमें क्या फायदा होगा? क्या उनकी खुशहाली उनके हाथ में नहीं होती? क्या बेदीनों के मंसूबे अल्लाह से दूर नहीं रहते? ऐसा लगता है कि बेदीनों का चिराग कभी नहीं बुझता। क्या उन पर कभी मुसीबत आती है? क्या अल्लाह कभी कहर में आकर उन पर वो तबाही नाजिल करता है जो उनका मुनासिब हिस्सा है? क्या हवा के झोंके कभी उन्हें भूसे की तरह और आंधी कभी उन्हें तोड़ी की तरह उड़ा ले जाती है? अफसोस, ऐसा नहीं होता। शायद तुम कहो, अल्लाह उन्हें सजा देने के बजाय उनके बच्चों को सजा देगा, लेकिन मैं कहता हूं कि उसे बाप को ही सजा देनी चाहिए ताकि वो अपने गुनाहों का नतीजा खूब जान ले। उसकी अपनी ही आंखें उसकी तबाही देखें, वो खुद कादिर मुतलक के गजब का प्याला पी ले, क्योंकि जब उसकी जिंदगी के मुकर्रह दिन अख्तताम तक पहुंचे तो उसे क्या परवाह होगी कि मेरे बाद घर वालों के साथ क्या होगा। लेकिन कौन अल्लाह का इल्म सिखा सकता है? वो तो बुलंदियों पर रहने वालों की भी अदालत करता है। एक शख्स वफात पाते वक्त खूब तंदुरुस्त होता है, जीते जी वो बड़े सुकून और इत्मीनान से जिंदगी गुजार सका, उसके बर्तन दूध से भरे रहे, उसकी हड्डियों का गूदा तरोताजा रहा। दूसरा शख्स शिकस्ता हालत में मर जाता है और उसे कभी खुशहाली का लुत्फ नसीब नहीं होता। अब दोनों मिलकर खाक में पड़े रहते हैं, दोनों कीड़े मकोड़ों से ढांपे रहते हैं। सुनो, मैं तुम्हारे ख्यालात और उन साजिशों से वाकिफ हूं जिससे तुम मुझ पर जुल्म करना चाहते हो, क्योंकि तुम कहते हो, रईस का घर कहाँ है? वो खेमा किधर गया जिसमें बेदीन बसते थे? वो अपने गुनाहों के सबब से ही तबाह हो गए, लेकिन उनसे पूछ लो जो इधर उधर सफर करते रहते हैं। तुम्हें उनकी गवाही तस्लीम करनी है कि आफत के दिन शरीर को सही सलामत छोड़ जाता है, कि गजब के दिन उसे रिहाई मिलती है। कौन उसके रूबरू उसके चाल चलन की मलामत करता? कौन उसे उसके गलत काम का मुनासिब अजर देता है? लोग उसके जनाजे में शरीक होकर उसे कब्र तक ले जाते हैं, उसकी कब्र पर चौकीदार लगाया जाता है, वादी की मिट्टी के ढेले उसे मीठे लगते हैं। जनाजे के पीछे पीछे तमाम दुनिया, उसके आगे आगे अनगिनत हुजूम चलता है। चुनांचे तुम मुझे अबस बातों से क्यों तसल्ली दे रहे हो? तुम्हारे जवाबों में तुम्हारी बेवफाई नजर आ रही है।